हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। थोड़ी देर रेस्ट के लिए अमन एजेंसी से घर आया था। घर आकर उसे पता चला कि सुबह के 11 बजने को आई थी और आंशी अब तक सो रही थी। वो अपने कमरे में गया। पहले अमन ने आंशी को जागने का सोचा, फिर उसने खुद के आराम का सोचकर आंशी को नहीं जगाया। वो अपने सोने के लिए बेड पर जगह बना रहा था। आंशी को साइड करने के चक्कर में अमन का बैलेंस बिगड़ गया। पैर स्लिप होने की वजह से वो उसके ऊपर था। ये अभी भी नहीं उठी। अमन हैरानी से उसे देख रहा था। आंशी ने कोई मूवमेंट नहीं की तो वो उसे प्यार से देखने लगा। सोते हुए वो किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो उसके चेहरे में खोया हुआ था। तभी आंशी ने बंद आंखों से कहा, अब उठो भी सीक्रेट एजेंट, मुझे क्या अपने नीचे दबा के मारने का इरादा है? तुम जगी हुई थी? अमन ने हड़बड़ाकर कहा। वो अभी भी आंशी के ऊपर था। आंशी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। अमन के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी अमन ने अपना हाथ आंशी के कमर पर रखा और खुद नीचे आ गया। अब आंशी उसके ऊपर लेटी थी। अब ठीक है? अमन ने धीमी आवाज में कहा। तुम इतना प्यार मत जताओ, कहीं मेरी नीयत खराब ना हो जाए, आंशी ने उसकी आंखों में देखकर कहा। वो उठने लगी। तभी अमन ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने पैरों को उसके पैरों से इंटरवाइंड कर लिया ताकि वो उठ न सके। आंशी ने उसकी इस हरकत पर उसे घूर कर देखा। क्या, अब छोड़ो भी वरना सच में मेरी नीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या करोगी तुम? अमन ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। ब अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आंशी ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अमन पहले तो हैरान हुआ, फिर वो भी उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसके हाथ आंशी की पीठ पर थे। वो उसके ड्रेस के हुक्स खोल रहा था। वो दोनों अपने इस मोमेंट में खोए थे कि अमन के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। अमन ने किस ब्रेक करके चेक किया तो ये लावण्या का कॉल था। उसका कॉल देखने के बाद अमन को तुरंत एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। सॉरी कहकर अमन उससे बाहर आ गया और वहीं इस मोमेंट के बाद आंशी के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। पर अमन के सॉरी बोलने के बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आंशी को गुस्सा आ रहा था। वो पैर पटकते हुए बोली, डिस्गस्टिंग, इतने अच्छे मोमेंट के बाद ये मुझे सॉरी बोल रहा है। उस चुड़ैल को भी अभी फोन करना था, सब सही जा रहा था, लेकिन नहीं। आंशी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी अमन वापस अंदर आया। वो कुछ कहता उससे पहले ही आंशी गुस्से में चिल्ला पड़ी, प्लीज अब और कुछ कहकर मेरा दिमाग खराब मत करना। वो आपके लिए वीक मोमेंट होगा जहां आप इमोशंस में बह गए, लेकिन मेरे लिए मेरा स्पेशल मोमेंट था जो आपकी उस एक्स ने खराब कर दिया। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अमन ने हैरानी से कहा। उसे आंशी के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था। अच्छा तो थोड़ी देर पहले सॉरी कौन बोलकर गया था? मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम मुझसे दूर रहना, वरना मेरी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। आंशी गुस्से में बाहर चली गई, जबकि उसके जाते ही अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। ये इसका कभी आप कभी तुम बोलने चक्कर भी नहीं समझ आता, कम से कम पूरी बात तो सुन लेती। मैंने किसके लिए नहीं, कॉल के लिए सॉरी बोला था। अजीब लड़की है, खुद ही पास आती है और खुद ही दूर रहने का बोलती है। अमन ने सिर हिलाया और रूम अंदर से बंद कर लिया। उसने लाइट्स बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। वहीं आंशी गुस्से में कमरे से बाहर निकली तो चेतना जी की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा पारा इतना हाई क्यों हो रहा है? चेतना जी ने उसके पास आकर पूछा। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है आंटी। नहीं, आप मुझे बताइए कि आपका बेटा अपने आप को समझता क्या है? एक तो पूरी पूरी रात घर से बाहर रहता है, वो भी किसी और के साथ, और घर आकर मुझ पर ही रौब जमाता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अगली बार वो तुम पर गुस्सा करे या चिल्लाए तो मुझे बताना। मुझे ना अब उनसे बात ही नहीं करनी है, मुझे अपने घर जाना है, आंशी ने बच्चों की तरह मुँह बनाकर कहा। तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही होगी ना? ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, बीजी से बात कर लेती हूँ, वैसे भी पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हें लेकर जाना था। चेतना जी ने प्यार से आंशी के सर पर हाथ रखा और उसके बाद तेजो जी से पूछने चली गई। आंशी में उनके पीछे जा रही थी, तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर गई जहाँ अमन का लाया हुआ सामान रखा हुआ था। वो चेतना जी के पीछे जाने के बजाय अब उस सामान की तरफ बढ़ी। चलो कुछ तो ढंग का काम किया उसने। आंशी ने अपने लिए कपड़े और अपनी जरूरत का सामान निकाला। वो वापस अपने कमरे में गई तो कमरा अंदर से बंद था। जरूर उसने जानबूझकर कमरा अंदर से बंद किया होगा ताकि आराम से अपनी एक्स से बातें कर सके, आंशी ने मुंह बनाकर कहा और गेस्ट रूम में चली गई। वहीं चेतना जी और तेजो जी बात कर रही थी। चेतना जी ने उन्हें आंशी को उनके घर ले जाने की बात कही। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, आंशी अपने घर हो आई भी, अमन को बोल दो, वो उसे ले जाएगा। तेजो जी ने शांत लहजे में कहा, प्रॉब्लम है बीजी, अभी थोड़ी देर पहले दोनों की अच्छी खासी बहस हुई थी। हम भी आंशी की फैमिली से नहीं मिले हैं, क्यों ना हम उसे उसके घर ले जाएं, हम उसकी फैमिली से मिलेंगे तो उन्हें भी आश्वासन हो जाएगा, आंशी यहाँ पर खुश है, चेतना जी बोली। तेजो जी को उनकी बात सही लगी, उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। उनके हाँ कहते ही चेतना जी आंशी के घर जाने की तैयारी करने लगी, तो वहीं आंशी भी अब तैयार हो चुकी थी। उसने कल की तरह आज साड़ी पहनने के बजाय इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो चेतना जी ने कहा, हाँ अब सही लग रहा है, यहाँ तो मैं भी साड़ी नहीं पहनती, फिर तुम्हें साड़ी में देखती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है। वैसे मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, आंशी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। फिर उसने देखा चेतना जी बहुत सारे मिठाई के डिब्बों के साथ खड़ी थी, इतने सारे स्वीट्स के डिब्बे, क्या आप कोई पार्टी थ्रो कर रही है? अरे नहीं, ये तो शगुन के लिए है, तुम पहली बार शादी के बाद अपने घर जा रही हो, मैंने और बीजी ने सोचा कि हम दोनों ही तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, दादी आपसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। तेजो जी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। उसके बाद वो तीनों आंशी के घर जाने के लिए निकल गए।